तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमला श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्गजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताम् च हे कृष्ण करुणा सिंधो बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरण वचसा ग्रणामि श्रीरामचन्द्र चरण शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरण शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हे माव दुर्गत छवि सुंदराय तस्मै महा प्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 Oh, हरे कृष्ण। कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संजोपनितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। ये जिज्ञासा थी शौनक उवाच, शौनक मुनि सुत गोस्वामी से पूछ रहे थे, ये श्रीमद् भागवत जो आपने कहा कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना, आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना, तो कस्मिन युगे, किस युग में, किस काल में, कौन से स्थान, किस हेतु से, क्या हेतु था उस कथा के, कथन के पीछे। कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। और कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, जिन्होंने इस भागवत की रचना की, लिखा, जो लेखक बने इस भागवत के, तो उन्होंने किसकी प्रेरणा से कृतवान किया, लिखा। संहितां मुनिः, ये जो परमहंसों की संहिता है, इस भागवत को परमहंस संहिता भी कहा जाता है। तो इस संहिता की, भागवत की रचना जो श्रील व्यास देव जी ने की, तो किन की प्रेरणा से ये श्रील व्यास देव लिखे इस ग्रंथ को, तो इस प्रश्न का, इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए किस स्थान पर कथा कही और क्यों कही और कब कही, इसके उत्तर आगे आएंगे इसी स्कंद में, प्रथम स्कंद में। सर्वप्रथम तो उत्तर दिया जा रहा है किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना हुई, और ये इसी स्कंद के, प्रथम स्कंद के पांचवें छठवें अध्याय का ये विषय वस्तु है, अधिकतर पांचवें अध्याय में ही इसका निरूपण है। चतुर्थ अध्याय के अंत में सुत गोस्वामी सुना रहे हैं, स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। तो श्रील व्यासदेव अब वे कहां है, बद्रिकाश्रम में है, उदिते रवि मंडले, सूर्योदय का समय है, बद्रिकाश्रम तो एकांत स्थान है ही, हम लोग भी कुछ वर्ष पूर्व गए थे बद्रिकाश्रम, याद है आप में से कौन कौन गए थे बद्रिकाश्रम यात्रा में, भी जाने वाले कुछ भक्त आज भी यहां बैठे हैं, तो उन्होंने अनुभव किया है कितना एकांत स्थान है वहां। या बद्रिकाश्रम, छोटा सा नगर, नगर क्या, ग्राम बस्ती ही बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण का मंदिर और कुछ आश्रम है, धर्मशालाएं हैं। फिर वहां से भी जब हम लोग व्यास गुफा की ओर जाते हैं, ये जो प्रसंग है जिसके संबंध में सुत गोस्वामी सुना रहे हैं, ये व्यास गुफा से संबंधित। व्यास गुफा कहां है? व्यास गुफा, यस, बद्रिकाश्रम में ही, सरस्वतिया, सरस्वती के तट पर। आपको स्मरण होगा सरस्वती के तट पर हम लोग थे, व्यास गुफा जब हम देखने गए, तो सरस्वती की गुफा की ओर जा ही रहे थे तो फिर और एक छोटा सा बस्ती आई, तो वहां से आगे कोई बस्ती है ही नहीं। विविक्त देश, एकांत, तो वहां एक साइन भी, पता नहीं आप लोग ये बातें याद रखते हैं नहीं रखते, लेकिन प्रचार के लिए हमें कुछ ऐसी बातें याद रह जाती है। कौन सी बात हम कहने वाले हैं, किसी को पता है? हाँ, वो तो है, लेकिन यस, तो वहां लिखा था ये आखिरी भारत की आखिरी चाय की दुकान, वहां से आगे बढ़ोगे तो चाय भी नहीं, चाइना ही मिलेगा, आगे चाइना है, चाय नहीं मिलेगी। तो ये आप चाय पियो, चाय पी के आगे बढ़ना है, आखिरी चाय की दुकान है, आगे कोई दुकान, कोई बस्ती, कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा ऐसा विविक्त देश, एकांत स्थान में बैठे थे श्रील व्यासदेव, परावरज्ञः स ऋषिः। कैसे ऋषि थे? भूत और भविष्य को जानने वाले, परावर ज्ञ, परावर को जानने वाले। तो फिर बहुत चर्चा यह है, किस ऋषि ने, किस मुनि ने, किस ग्रंथों की रचना की, अध्ययन किया, जो उनका नाम जुड़ा हुआ है, किसके किसके साथ, किस वेद के साथ, किस पुराण के साथ, किस उपवेद वेदांग के साथ, इतिहास के साथ, ये सब, यहाँ ये सारे ग्रंथ श्रील व्यास देव ही लिखे। फिर उसके अध्ययन अलग अलग विद्यार्थी करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। ये शुरुआत में वर्णन आता है। तो इतने सारे हरि बोल, तो जितने भी वेद पुराण सबकी रचना श्रील व्यास देव किए हैं, इतिहास भी लिखे हैं, महाभारत भी लिखा, वेदांत सूत्र भी लिखा है, तो हुआ नाति प्रसीदत धृतया सरस्वत्यास्तटे सुचो वितर्कयन विभक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्। वे प्रसन्न नहीं थे, इतना सारा उन्होंने लिखा, लिखा पढ़ाई खूब की उन्होंने, लेकिन इतना सारा करने पर भी वे प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे थे। और ये देखा नारद मुनि ने देखा उसी प्रातः काल, नारद मुनि वहां पधारे, बद्रिकाश्रम में भी आते ही रहते नारद मुनि। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण
नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री
नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्रिकाश्रम के नारायण के प्रधान पुरोहित अर्चक तो साक्षात नारद मुनि ही है। उसी नारायण की प्राप्ति करके सारे संसार को वो नारायण को दे देते हैं, इसलिए उनका नाम है नारद। द मतलब देने वाले, नारद जो नाम है देने से संबंध रखता है। किसको किसको देते हैं वे? नारायण को देते हैं। तो भारतवर्ष में कई अलग अलग वर्ष है, तो इस भारतवर्ष में भारतवर्ष के आराध्य वर्ष के दृष्टि से आराध्य है नारायण और उनकी आराधना करते हैं नारद मुनि। तो बद्रिकाश्रम वे आया करते हैं, उनका हेडक्वार्टर समझिए, फिर आप समझ में आएगा आपको। तो वहां से जाते प्रचार के लिए, पूरे पृथ्वी का भ्रमण और स्थान पर जहां सब जगह जाते हैं। ओम भूर्भुवा स्वा भूर्लोक भूवलोक स्वरलोक फिर महरलोक फिर जनलोक फिर तपलोक फिर सत्यलोक। ऊपर कितने लोग हैं? सात लोग ऊपर है, आपने तो लिखे तो नहीं। यहां से ऊपर कितने लोग? सात। यहां से नीचे कितने लोग? सात है। कुल कितने हो गए? 14 भुवन हो गए। ऐसा इस पूरे ब्रह्मांड के जितने जो भी हम कुछ देखते हैं सब तो दिखाई नहीं देता, ग्रह नक्षत्र तारे जो है तारा मंडल है, इसका विभाजन सृष्टि का विभाजन इस प्रकार 14 हिस्सों में किया हुआ है। तो पृथ्वी से ऊपर भूलोक भूर्लोक कहते हैं, भूर्लोक भूर भू भू भूवलोक फिर स्वरलोक फिर इसके ऊपर है क्या महरलोक, इसके ऊपर जनलोक, इसके ऊपर तपलोक, इसके ऊपर कौन सा रहेगा? सत्यलोक, और उसके ब्रह्मा का अपना लोक है और श्वेतद्वीप भी है ऊपर। श्वेतद्वीप दूध सागर जहां प्रातःकाल में आप दो विष्णु के नाम सुने थे। कौन कौन से दो विष्णु के नाम? एक तो महाविष्णु और दूसरे गर्भदक्षय विष्णु। तो विष्णु के तीन प्रकार है, तीन प्रकार के विष्णु को जो जानता हो मुक्त हो जाएगा। आपको आपकी पूरी मुक्ति नहीं होगी क्योंकि आपने दो ही नाम सुने हैं। तो तीसरा भी तीसरे विष्णु है क्षीरोदक्षय विष्णु कहलाते हैं। कैसे विष्णु है ये? क्षीरोदक्षय, क्षीर मतलब दूध, दूध के सागर में, उदक मतलब सागर, क्षीरोदक शुरोदक दक्षाई, उनका भी अपना स्थान ऊपर है, इसी ब्रह्मांड में वे भी निवास करते हैं। और हमारे हृदय में कण कण में जो भगवान हम लोग कहते हैं, भगवान कहाँ कहाँ है, कण कण में जो भगवान है वो क्षीरोदक्षय विष्णु है। अंडांतरस्त परमाणुचयांतरस्थम ब्रह्मा, ब्रह्म संहिता में कहते हैं दो विष्णु के संबंध में करें, ब्रह्मांड अंडा अंडांतरस्थम, अंडे में मतलब ब्रह्मांड में एक तो गर्भदक्षे विष्णु रहते हैं जिनके नाभि से कमल का फूल और ब्रह्मा की उत्पत्ति, वो गर्भदक्षे विष्णु हो गए। और परमाणुचयांतरस्थम, स्थम स्थम चल रहा है ना, स्थ मतलब होना, किसी स्थान होना, तो ब्रह्मांड में एक तो गर्भदक्षे विष्णु है, फिर परमाणुचयांतरस्थम, परमाणु अणु परमाणु, एटम एटम आप सुने होंगे पढ़े होंगे, एटम होता अणु, अणु परमाणु, तो परमाणुचयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद को मैं भजता हूं जिस गोविंद के ये रूप क्षीरोदक्ष गर्भदक्षय विष्णु ब्रह्मांड में रहते हैं और फिर हर अनु अनु कन कन में, और कन कन कहा जाए उस अनु को परमाणु को, तो उसमें भी स्थित भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु को मेरा प्रणाम है। तो नारद मुनि बारंबार बद्रिकाश्रम आया करते हैं जहां श्रील व्यासदेव भी रहते हैं। तो श्रील व्यासदेव के गुरु है नारद मुनि, संबंध देखिए क्या है, शिष्य है श्रील व्यासदेव भगवान के, दोनों भगवान के अवतार हैं। प्रथम स्कंद का हम लोग अब चौथा अध्याय खोल के बैठे हैं, चौथा अध्याय, इसके पहले का अध्याय प्रथम स्कंद अध्याय तीन, उसमें सुत गोस्वामी 24 अवतारों का वर्णन किए हैं। वैसे 24 अवतारों का वर्णन होना चाहिए था, वहां केवल 22 ही है, दो अवतार नहीं कहे हैं। और ये अवतारों के नाम कहने के अंत में फिर उन्होंने कहा है, एतै चांश कलापुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण को अलग कर दिया है, ये सारे अवतार कहे 24 अवतार 22 24 अवतार यहां लिखे इसके पहले अध्याय में, प्रथम स्कंद ना, प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय जिसको हमने पढ़ा नहीं, तो उसमें वे लिखते हैं कृष्णस्तु, तू मतलब किंतु, तो ब्रेक लगाया, इफ्स एंड बट्स जिसको कहते हैं, किंतु ये तो सा एते चांश कला पुंसाम, ये तो भगवान की कला या अंश है या विस्तार है, विस्तार के विस्तार है, किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण कैसे है, स्वयं भगवान है। इन शब्दों में कृष्ण जो सर्वोपरि है उसकी स्थापना हुई है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, भगवान गीता में कहे अर्जुन को कि मेरे बराबर वाला कोई नहीं है, मुझसे ऊपर भी कोई नहीं है, मत्तः मुझसे परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, कोई भी नहीं है मुझसे बढ़कर। ये कोई ऐसी बड़प्पन की बात नहीं कर रहे भगवान श्री कृष्ण, कोई अहंकार वाली बात नहीं कहते। भगवान सच जो भी कहते भगवान सच ही कहते, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। जैसे हम लोग झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहते, जो भी कहूंगा झूठ ही कहूंगा। ओ वाह, तो उस अध्याय में कहा, तो उसी अध्याय में व्यासदेव का भी नाम है। 22 जो नाम है उस अध्याय में, व्यासदेव जी का भी नाम है और नारद जी का भी नाम है। तो और ये दो अवतारों के प्रकार होते हुए भी उसमें से एक बनते हैं गुरु और दूसरे बन जाते हैं शिष्य। तो गुरु है नारद मुनि और शिष्य है व्यासदेव। तो शिष्य तो वही थे श्रील व्यासदेव जो सारे ग्रंथों की रचना कर चुके थे। तो अब गुरु महाराज लौट के आए, नारायण नारायण कहते हुए, प्रातः काल का समय था, लौट आए बद्रिकाश्रम। देखते हैं तो उनके शिष्य श्रील व्यासदेव नाति प्रसीद धृतया धृदया, कुछ ज्यादा सुखी नहीं दिखाई रहे दे रहे थे। देखने से पता चला कि चेहरा दिखाता है मन का, ये एक प्रकार से आईना है। तो उन्होंने पूछा, क्या क्या कारण क्या है, आप दुखी क्यों हो? तो हुआ तो श्रील व्यासदेव कहते हैं कि मैंने तो, आप ही बता सकते हो, मैंने तो सारे ग्रंथों की रचना तो की है, वेद, चार वेदों की, छह वेदांगों की, 108 उपनिषद भी मैंने लिखे, महाभारत भी लिखा 1,00,000 श्लोकों वाला, वेदांत सूत्र भी लिखा। लेकिन ये सारा लिखने के उपरांत भी मुझे कुछ प्रसन्न नहीं, मैं दुखी हूं, मैं कुछ प्रसन्नता अनुभव नहीं कर रहा हूं। आप ही बताइए क्या क्या बिगाड़ा मैंने, क्या मेरे इन अब तक जो मैंने ग्रंथ लिखे है उसमें कोई दोष है, कोई त्रुटि है, कुछ कोई मैंने अपराध किए है जिसके कारण मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन, आजकल बात चलती रहती है, जॉब तो है लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं, कोई समाधान नहीं। तो मैंने, आई एम अ राइटर, मैं लेखक हूं, ये सब तो लिखा हूं, देखिए ढेर के ढेर ये सारे पड़े हैं ग्रंथ, लेकिन न जाने क्यों आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो हुआ, आप ही देखिए, इन ग्रंथों को देख सकते हैं आप, आपके समक्ष है। तो नारद मुनि देखे, जैसे कोई लेखक नया किताब लिखता है तो फिर उसका रिव्यू होता है, बुक रिव्यू चलते हैं, और कोई विशेष ग्रंथ है, बुक है, तो फिर लिखा भी अखबार में भी आ जाता है, इस बुक की विशेषता है, ऐसा है वैसा है, आप पढ़ो। तो नारद मुनि देखे और नारद मुनि अब कह रहे हैं, हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया, डॉक्टर है, गुरु महाराज मतलब डॉक्टर है, उन्होंने नाड़ी परीक्षा कर ली और हाँ यस 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 समझ गया समझ गया, डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोस। डायग्नोसिस के बाद क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन होगी। पहले तो थोड़े लक्षण देखे जाते हैं, बाद में दवा, ये दवा, ये परहेज, ये सब। तो अभी नारद मुनि यहां कह रहे हैं, यथा धर्मादयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हीन अनुवर्णिता। प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय नौवा श्लोक हम पढ़ रहे थे, बाद में आप देख सकते हो, 1:5:9 बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रचार में भी जो भागवत धर्म के प्रचारक है उनके लिए ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है, नारद मुनि का वचन है, तो उनके अपने कमेंट्स है। अब तक तो जितने ग्रंथ लिखे हैं श्रील व्यास देव जी ने, उस पर अपना अभिप्राय बता रहे कि समस्या ये है। नारद मुनि कह रहे यथा धर्मादयस्य अर्था मुनिवर्यानुकीर्तिता, आप मुनिवर्य हो व्यासदेव, आप मुनिवर्य मतलब श्रेष्ठ मुनि तो हो आप, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि जितना आपने धर्मादयस्य अर्था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ है इस पर इतना आपने जोर दिया है, इसका विस्तृत वर्णन आपने किया है, लेकिन उतना वर्णन आपने या उससे अधिक वर्णन करना चाहिए था, लेकिन उतना ही भी नहीं, उससे बहुत कम या लगभग प्रायः है नहीं। क्या अभाव क्या है, वासुदेवस्य महिमा ही न अनुवर्णितः। आप समझ रहे, वासुदेव का महिमा कहां है, वासुदेव के गुणगान कहां है, कृष्ण की चर्चा कहां है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, धाम, भक्त, ये जो चर्चा होनी चाहिए थी आपके द्वारा ग्रंथों में, ये आपने नहीं लिखा है। बाकी तो बड़े कर्म कांड और ज्ञान कांड और ये उपासना कांड और ये यज्ञ फलाना, ये देवी देवताओं की पूजा, स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, प्रायश्चित, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी, लेकिन भक्ति का आपने प्रचार नहीं किया। ज्ञान योग, अष्टांग योग सब हो गए, कर्म योग, लेकिन भक्ति योग कहां है, भक्ति कहां है, भगवान कहां है, वासुदेवस्य महिमा, वासुदेव का महिमा कहां है। श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। उन गुरुजनों के चरणों की वंदना हम करते हैं। कैसे गुरुजन, जो रसास्वादन करते हैं, प्रतीक्षण प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य, हर क्षण वे लोलुप रहते हैं। जैसे लोलुप, कई लोलुपता कई प्रकार की होती है, शराब पीने के लोलुप हो सकते हैं, टेलीविजन देखने की लोलुपता, कई प्रकार की लोलुपता, आसक्ति, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, ये एडिक्शन, वो आसक्ति, वो इसको छोड़ नहीं सकता व्यक्ति, दौड़ता उसकी तरफ खींचता जाता है, उसको लोलुपता कहते हैं। सो प्रतीक्षण अस्वादन लोलुपश्य। तो आचार्य गण भी लोलुप होते हैं रसास्वादन करने में। तो किसका रसास्वादन? श्री राधिका माधव योर अपार। श्री राधा और माधव के, माधव योर अपार माधुर्य लीला, राधा माधव की माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। राधा माधव का नाम रूप गुण लीला धाम, इसकी चर्चा करने में प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य बड़े आसक्त रहते हैं जो गुरुजन आचार्य गण। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। लेकिन आपके जो ग्रंथ अब तक लिखे हो इसमें ये राधा माधव वासुदेव का महिमा, इसका अभाव हम देख रहे हैं। फिर आगे नारद मुनि समझा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दो पंछी की बात। एक पंछी है कौवा, कौवा तो काओ 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 और जहां कूड़ा करकट है वहां जाता है, और भी जहां गंदे स्थान है उसकी ओर कौवा जाता है। तो दूसरा पंछी है यदवायसम तीर्थम उशंति मानसः। तो कूड़ा करकट जब डस्टबीन्स म्यूनिसिपैलिटी के वहां सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक स्थान। और फिर दूसरा स्थान है मानस सरोवर जो स्वच्छ है पवित्र है, जल में कमल खिले हुए हैं, ऐसे स्थान की ओर हंस आकर्षित होते हैं, हंस वहां एकत्रित होते हैं। तो हंस एकत्रित होने के स्थान वो एक स्थान हुआ, और कौवे जहां एकत्रित होते हैं वो दूसरा स्थान हुआ। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि कोई लिखना भी है, कोई किताब भी है प्रिंटेड मटेरियल, तो वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। यहां कौवे और कैसे इसका विभाजन होगा। हरेर यशः जगत पवित्रम, जिन ग्रंथों में जिन किताबों में भगवान का महिमा गाया हुआ है, जो महिमा जग को पवित्र करता है, वो ग्रंथ वो किताबें एक और जिसमें भगवान का महिमा नहीं गाया हुआ है वो दूसरी ओर। फिर तीसरा भी प्रकार हो सकता है, श्रील व्यासदेव कुछ अश्लील या जो आज न जाने क्या क्या लोग लिखते हैं और संसार क्या 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 नहीं पढ़ता है, तो इसी के अंतर्गत वो भी है धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्रील व्यास ने कम से कम उनका जो पैकेज है उसमें चार प्रकार है, धर्म भी है, लिखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। तो उन्होंने ठीक है चारों पुरुषार्थ बता दिए। लेकिन आजकल का मनुष्य तो दो ही पुरुषार्थ में तल्लीन है, वो है बीच वाले दो। क्रम से अगर आपने लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो शुरुआत होनी चाहिए धर्म से, तो कहां तक पहुंच जाएंगे? मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शुरुआत अगर अर्थ से है, पहला धर्म पहला पुरुषार्थ किया ही नहीं, कहां से शुरुआत की हमने? अर्थ से शुरुआत की, तो हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे? काम तक पहुंच जाएंगे। तो सारा संसार दो पुरुषार्थ में लगा हुआ है, यही सीखा हमने पाश्चात्य जगत से। जब हम गुलाम रहे लगभग 1000 वर्षों तक, शायद हम भूल भी गए होंगे कि मुसलमान यवनों ने भी कुछ 700-800 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाया, और फिर आ गए डच, फ्रेंच और फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने 150-200 साल। इस प्रकार पूरे 1000 वर्षों तक जब हम गुलाम ही रहे, तो वाह, फिर तो उनकी नकल करने लगे, उनकी हा में हा मिलाने लगे, और विदेश का प्रोडक्ट, द बेस्ट प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग वहां के थॉट्स, वहां के विचार, और ये आज भी चल रहा है। ये रिवर्स होना चाहिए था, श्रील प्रभुपाद शुरुआत किए हैं टू रिवर्स दिस ट्रेंड। यहां से बाहर जाना चाहिए ज्ञान, और विज्ञान भी है और संस्कृति है और धर्म है, ये धर्म धानी है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आज प्रातः काल में हम लोग एक पाठ सीखे, कौन सा था? परोपकाराय इदम शरीरम। ये मनुष्य शरीर किस लिए है? परोपकाराय, परोपकार के लिए, परोपकार करो। तो ये भारत अन्य देशों पर क्या उपकार कर सकता है, ये प्रभुपाद सिखाए। बाकी देश तो समझते कि ये भारत बेगर्स कंट्री, भिखारी देश है, ये है वो है। जब हम विदेश कभी जाते हैं तो लोग, कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, आर फ्रॉम इंडिया, ओ दैट बेगर्स कंट्री, ओ भिखारी देश, ऐसा देश वैसा देश, स्नेक चार्मर्स पुंगी बजाते हुए सोचते हैं कि ऐसे इतने लोग पिछड़े हैं, स्वयं को बड़ा, हम लोग तो चंद्रमा पर जा रहे हैं, क्या क्या मतलब, उनको वहां शांति नहीं, इसीलिए और कहीं जा रहे हैं। गांव के लोग, शहर शहर के लोग बड़े शहर की ओर जा रहे हैं, बड़े शहर के लोग लंदन न्यूयॉर्क की ओर जा रहे, वहां के लोग चंद्रमा पर जा रहे, मतलब जहां भी है वहां सुखी नहीं है, ये प्रूफ हुआ उसका। कहीं ना कहीं आपको सोचते वहां द ग्रास इज ग्रीन ना, आ दूर वहां, वो देखो हरियाली, वहां हरियाली, यहां तो रेगिस्तान है। तो ये मृग जल का अनुभव है संसार में, मृग जल, मृग जैसे रेगिस्तान में सोचता वहां जल है, तो वहां जब हिरन जाएगा तो वहां पर इसकी खोज में ही उसकी बेचारे की जान चली जाती है। तो मनुष्यों का, मनुष्य जाति का यही हाल हो रहा है। तो भारत का गौरव प्रभुपाद बढ़ा रहे हैं, प्राचीन भारत का, जिसको भारत हम लोग कह सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था में कोई प्रगति टेक्नोलॉजी, यांत्रिकीकरण, औद्योगिक उद्योग ये ठीक है, पाश्चात्य देश उसमें आगे हो सकते हैं, लेकिन इस देश की क्या पहचान है? धर्म। धर्म के लिए ये भारतवर्ष प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। तो विदेश तो हमको दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, तो हमको भी तो देना होगा, लेकिन हम सोचते क्या दे सकते हैं, कुछ है नहीं हमारे पास। तो प्रभुपाद ने सिखाया हम लोग क्या दे सकते हैं। तो स्वामी जी क्यों आए हो हमारे देश, उन्होंने पूछा। इंग्लैंड में पत्रकारों ने पूछा, स्वामी जी व्हाई हैव यू कम टू आवर कंट्री, हमारे देश क्यों आए हो? तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग हमारे देश भी तो आए थे, 150-200 साल रहे, और हमारे देश की जो भी मूल्यवान वस्तु है, संपत्ति है, उसको आप लूट लिए, अपने देश ले आए उसका उपभोग लेने हेतु। लेकिन वैसे आप तो हमारे देश की जो सर्वोत्तम जो संपत्ति है, द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट, हमारे देश की जो भेंट है, उसको तो आप पीछे ही छोड़े। तो मैं अब क्या क्यों आया हूं आपने पूछा, तो मैं कहूंगा कि मैं उस हमारे देश की जो सर्वोत्तम भेंट है उसको आपको देने आया हूं। तो उन्होंने जब पूछा इसी कौन सी संपत्ति है आपके देश की जो हमारे वाइस रॉयज और गवर्नर्स उनकी नजर नहीं गई उस पर, उसको भी चोरी नहीं किए हुए, लूटे नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा हमारे देश की संपत्ति हमारा धर्म, हमारे देश की संपत्ति है ये श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता हमारे देश की संपत्ति है, ज्ञान जो भाव में रथ, प्रकाश में जो तल्लीन, और हमारे देश की संपत्ति है हमारे देश की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, जो हम लोग कह रहे थे कितना बड़ा परिवार हमारा, कितना बड़ा परिवार, जितनी पृथ्वी बड़ी है ये सारे मनुष्य मिलके हमारा एक परिवार, ऐसे विचार की जो संस्कृति है, मातृवत परदारेषु, परदारा अपनी पत्नी छोड़ के अन्य सारी स्त्रियां कौन, मातृवत माताएं, बस इतना अगर हम कर सकते हैं, सारी माताओं को देवी समझ सकते हैं, माता समझ सकते हैं, कितना अंतर आएगा इस संसार में। और भी कई सारे अंतर, और भी कई सारी बातें की जा सकती है हमारे संस्कृति के जो मूल्य है, द वैल्यूज है, विचार जो है, जो उच्च विचार है। तो ये संपत्ति है हमारे देश की, मातृवत परदारेषु लोष्टवत परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, ऐसे जो देखता है वो पंडित है, ऐसे जो समझता है वो पंडित है, ज्ञानी है। तो ज्ञान, इन बातों का ज्ञान, ये संस्कृति का ज्ञान, ये संस्कृति हमारे देश की संपत्ति है जो हम देने आए हैं, प्रभुपाद ने कहा। और गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन क्या है, धन है, धन वेल्थ है। हरि नाम क्या है, क्या है हरि नाम, धन है, वेल्थ है। और कहा कि वेल्थ है, ये कहां का धन है, गोलोकेर प्रेम धन, गोलोक वृंदावन का, भगवान के धाम का ये धन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लाए और कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम का वितरण किए भारत भूमि में। इसलिए प्रातःकाल उठते ही धन की कमाई शुरू करनी चाहिए। प्रातःकाल उठते ही आप कहो कि बाकी लोग तो सोए हैं तो धन कैसे कमाएंगे, धन जिनसे कमाना है, धन जिनसे लूटना है, जिनसे व्यापार करना है, उनके बैंक से हमारे बैंक में ट्रांसफर करना, उनके जेब से हमारे जेब में, चोरी करके नहीं, मतलब युक्ति पूर्वक, चालाकी से। वो तो सोए हैं तो हम लोग कैसे धन कमाएंगे प्रातःकाल में, कैसे कमाओगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठते ही धन कमाना, हरे कृष्ण भक्त क्या करते हैं, उनकी कमाई शुरू हो जाती है 5 o'clock इन द मॉर्निंग। बाकी लोग तो 10-11 बजे उनकी कमाई शुरू हो जाती है, लेकिन हरे कृष्ण भक्त तो 4:30-5 बजे ही कमाना शुरू कर देते हैं, बैठते हैं और डिपॉजिट करते रहते हैं भगवान के बैंक में, हरि नाम बैंक में डिपॉजिट करते रहते हैं। और आत्मा को प्रसन्न करने वाला यही धन है। और हम समझे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा को प्रसन्न करने वाला यही धन है। इस संसार का धन हमारे शरीर की कोई आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, लेकिन आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद का ये धन भी, हरि नाम का धन के वितरण के लिए भी मैं आया हूं। तो प्रभुपाद जहां भी गए, जहां हमारे देश के मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर भी जाते रहते हैं, लेकिन कुछ मांगने जाते हैं, हमें लोन दे दो, हमें कुछ कंप्यूटर साइंस के कुछ बातें सिखाओ, ये करो वो करो कुछ, तो हम लोग देने नहीं जाते, हम लोग लेने जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद कैसे क्या करने गए, देने के लिए गए, क्योंकि प्रभुपाद समझ, मेरा देश इतना धनवान है, इतनी संपत्ति है, इस देश का धन है, धर्म ही धन है, संस्कृति इस देश की संपत्ति है, यहां के मंत्र महामंत्र ये धन है, यहां के ग्रंथ उसमें जो ज्ञान है ये धन है। तो प्रभुपाद स्थापना किए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना, इस्कॉन की स्थापना करके ये सारा वितरण शुरू कर दिए। तो उन देशों में गए और वहां के लोगों को ही एजेंट बना दिया। अमेरिका में गए, इसके वितरक कौन बने, साथ में एक रूपा तो अकेले गए थे, तो वही के लोगों को इसका महात्म्य समझा के उन्हीं को एजेंट वितरक बना दिया और वे वितरण करने लगे अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और कहां कहां। फिर प्रभुपाद आए, बंबई आए 71 में, तो हम भी कुछ लोग मिले प्रभुपाद से, तो फिर हम भी बन गए एजेंट। और अभी तो यहां इस अरण्य में ही हमने एजेंसी खोल दी, ग्राहक मिल गए तो वितरण हो रहा है। तो 1000 वर्षों से जो हम गुलाम गिरी और गुलाम जैसे सोचता है, वैसे अब भी सोच रहे हैं, देश जो स्वतंत्र हुआ तब सोच में कुछ अंतर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। हमारे पहले ही प्रधानमंत्री, उन्होंने घोषणा की हमारी जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, दीज आर आवर टेम्पल्स। कोई नायगारा फॉल, नायगारा नॉट ना, 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 कोई डैम का ओपनिंग, भाकरा नानगल गए, भाकरा नानगल, यस दिस इज आवर टेम्पल, ये हमारे तीर्थ है, ऐसी घोषणा। मतलब मंदिरों से लोगों का मन हटाना, ये अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है, सारा जोर किस पर, अर्थव्यवस्था पर। तो जैसे शुरुआत हुई 1947 से 2006 तक वही चल रहा है, और अब तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो स्वयं ही अर्थशास्त्रज्ञ है, इकोनॉमी के इज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन द प्लैनेट, तो ऐसे सारा चेहरा ही बदल रहे हैं। तो सारे कंट्रीज आके इस देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, इस देश को तो धर्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए थे, लेकिन इस देश की ओर अब कुछ कीमत बढ़ रही है, संसार के दृष्टि में भारत का महत्व कुछ बढ़ रहा है, लेकिन फिर इकोनॉमी वही बात। जैसे श्रील व्यास देव ने जोर दिया ये अर्थ पर, काम पर, और धर्म भी, धर्म में भी कई, धर्म में भी कई प्रकार है, कई स्तर है, इसलिए भगवान को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसमें अंतर है, देखिए। तो जिस भगवान ने कहा गीता के प्रारंभ में चौथे अध्याय में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं, वही भगवान आगे अंत में, गीता के अंत में क्या करे, सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को क्या करो, त्याग दो। पहले तो कहे आप धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूं, और अभी आप कह रहे हो सर्वधर्मान परित, सारे धर्मों को त्याग दो और क्या करो, मामेकम शरणम व्रज। तो प्रभुपाद समझाते हैं ये जो मामेकम शरणम व्रज है, मेरी शरण में आ जाओ, यही धर्म है। तो कई बार नाम के धर्म, तथा कथित धर्म, या धर्म के कुछ उपधर्म या सेकेंडरी प्रिंसिपल्स, कोई नीति नियम और ये वो, ये बाधा बन जाते हैं भगवान की शरण में, शरण लेने में। तो उसका त्याग करो। कौन थे वो, वामन देव की शरण में कौन जाना चाहते थे, बलि महाराज। तो गुरु जी ने कहा, गुरु थोड़े कर्मकांडी थे, तो नहीं 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 नहीं, सावधान, इनसे दूर रहो, छीन लेंगे सब कुछ। तो वामन देव के पूरे समर्पण में बाधा बन रहे थे गुरु यहां, तो उन्होंने गुरु को ही त्याग कर दिया, ठीक है हम आपको भी स्वीकार नहीं करेंगे, आपको तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रभुपाद कहा करते थे, भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, और फिर गुरु कहते हैं आप भगवान की शरण में जाओ, भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, फिर गुरु ने कहा आप भगवान की शरण में जाओ, तो कोई अंतर है, भगवान ने जो कहा और गुरु ने कहा कोई अंतर नहीं है, ये हो गया यथारूप, या ये भगवत गीता हो गई एज इट इज, जसी आए तसी, भगवत गीता कसी, जसी आए तसी, यथारूप एज इट इज, क्योंकि भगवान ये कह रहे और गुरु और ही कुछ कह रहे। तो ऐसे गुरु का भी, ऐसे शास्त्र का भी, ऐसे मंत्रों का या तंत्रों का त्याग, यही सर्वधर्मान परित्यज्य है। तो यही बात नारद मुनि श्रील व्यास देव को कह रहे हैं, कहां है वासुदेव का महिमा, कहां है? बाकी तो बड़ा कर्मकांड इत्यादि बहुत अपने रचा है, लेकिन वासुदेव कहां है, वासुदेव का महिमा कहां है? तो दो प्रकार के तीर्थ, एक कौवे जहां एकत्रित होते हैं और दूसरे जहां हंस एकत्रित होते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि श्रील व्यास देव उतने तो कोई नीच बात तो नहीं किए जो बातें आज हो रही है अखबारों में या कथाओं में कादंबरियों में टेलीविजन में और रेडियो मिर्ची और हमने तो कभी सुना नहीं, लेकिन नाम तो ऐसा पढ़ने में आया। ये सब नीच बातें हैं। भारत को शोभा बिल्कुल नहीं, ये कलंक है, ये दाग है, जिसको भारत कहते उसमें फिट ही नहीं होता। ये आजकल के टेलीविजन, आजकल के रेडियो, आजकल का सारा मोबाइल एंड उस पर क्या क्या प्रचार प्रसार, या उसकी जो क्वालिटी है वो नीच है। उच्च विचार क्या होने चाहिए? हम रेडियो टेलीविजन के विरोध में प्रचार नहीं करते, खूब हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, सारे विचारों का आदान प्रदान खूब होता रहे, लेकिन कैसा विचार हो? उच्च विचारों का प्रचार हो। 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे सर्वोच्च विचारों का प्रचार हो तो कल्याण होगा जगत का। लेकिन विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें सारी मदद हो रही है। रेडियो टेलीविजन क्या कर रहे हैं? स्पीड बढ़ा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। तो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? हम लोग थोड़े जल्दी पहुंच जाएंगे, नरक में जाने की थोड़ी जल्दी है, स्लो क्यों जाएंगे, हम लोग स्पीड से जाएंगे। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बध्यवत्यपि नामानि अनंत शेषु अंकितानि यत् श्रणवन्ति गायन्ति ग्रणन्ति साधवः। तो ग्रंथ कैसे होने चाहिए? या नारद मुनि कह रहे हैं, कोई ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से कोई उसमें ठीक है, कोई टेक्निकली कोई फ्लॉ है, कोई दोष है, छंद में कोई थोड़ा बिगाड़ भी हो सकता है, ठीक है उस प्रकार, लेकिन नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्, सर्वत्र उस जो लिखा हुआ है उसमें भगवान का नाम यश गान वर्णन है, जो वर्णन सुनना और सुनाना पसंद करते हैं कौन? श्रणवंती गायंती ग्रणंती साधवः, साधु जिन्होंने सबको स्वयं को धोया हुआ है। साधु कभी कभी कहते हैं सा का अर्थ निकालते छे, मराठी में आ जाता है वो साधु, साधु करे जिसने छे शत्रु को के दोष से जो मुक्त है। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये छह क्या है हमारे शत्रु है। षड रिपु, रिपु का है रिपु, षड रिपु। तो वह जब तक इस इनके चंगुल में, जब तक इनके इनके प्रभाव से हमारा जीवन हमें नचा रहा है, कौन नचा रहा है? काम। हम काम के पुजारी है, काम के चाकर नौकर है। काम, फिर क्रोध, फिर लोभ। थोड़े में काम बन जाता है, लेकिन जब लोभ, व्यक्ति लोभी बन जाता है तो गुलाम हो गया, लोभ का गुलाम हो गया। इसलिए जो निर्लोभ, निष्काम, क्रोध रहित जो महात्मा होते हैं, वो वही आनंद लुटते हैं, वो सुखी होते हैं। वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद फकीर करे, जो आनंद फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। आनंद, जो आनंद निष्किंचन भक्तों को, निष्किंचन उसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे षड गोस्वामी वृंदावन के, छह गोस्वामी वृंद, वो तो पेड़ के नीचे रह जाते हैं, और वो भी तीन दिन के लिए, एक पेड़ के नीचे कितने दिन? तीन दिन। वे सोचते कि शायद फिर इतना अच्छी छाया है या हरियाली है सोने के लिए, तो शायद हम आसक्त हो जाएंगे, चलो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीन दिन एक पेड़ के नीचे आगे बढ़ रहे। लेकिन वे कितने प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता किसमें है? भगवान के भक्ति में प्रसन्न है अंदर से, आनंद। हम आनंद के बने हुए हैं, हमारा स्वभाव ही कैसा है? आनंद का है। इसीलिए हम दुखी नहीं होना चाहते, क्योंकि हम स्वभाव से आनंद पूर्ण है। तो उस आनंद कंद भगवान से हमारा संबंध जब स्थापित होगा, तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े चोहिकड़े, आनंदी आनंद गड़े। हम मॉरिशस में ऐसे कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। मॉरिशस में कह रहे आनंदी आनंद गड़े, इकड़े तिकड़े चोहिकड़े, आनंदी आनंद गड़े। तो मॉरिशस के लोग थोड़े प्रसन्न हो गए, आनंदी आनंद गड़े। तो ये आनंद बाहर, आनंद अंदर है। सच्चिदानंद घन भगवान के हम अंश है, तो हम भी सच्चिदानंद है, छोटा स्वरूप। तो हम बाहर देख रहे, अंतर्मुख होने का समय, अंतर्मुख, बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख। धर्म अंतर्मुख बनाता है। तो ऐसे ग्रंथ होने चाहिए या उनका अध्ययन करना चाहिए, जिसमें साधु शरणबंति गायंती गृणंति साधवः। तो अब नारद मुनि श्रील व्यास देव को अपने जीवन की थोड़ी गाथा, अपना जीवन चरित्र सुनाएंगे। नारद मुनि सुनाएंगे श्रील व्यास देव जी को कि मैं कैसे कृष्ण भक्त बना, भगवत भावना कैसी मुझ में जगी, हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारे बैक टू गॉडेड नामक पत्रिका में अलग अलग भक्त ऐसे आर्टिकल लिखते रहता, हाउ आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, मैं कैसे कृष्ण भावना भावित बना, कैसे आकर्षित हुआ। तो उसी आशय का ये यहां पर नारद मुनि भी कहे, मैं कैसे भक्त बना। तो अहम पूरा, जिसमें ये कहने का तात्पर्य इसीलिए कह रहे कि इसे भागवत का कोई संबंध है, श्रीमद् भागवत का कोई संबंध होने से तो प्रश्न तो पूछा गया था शौनक आदि मुनि ने, श्रील व्यास देव जी को किसने प्रेरणा दी भागवत लिखने की, किसने दी? नारद मुनि ने। तो अभी वे समझ गए मैंने अब तक जितने ग्रंथ लिखे हैं उसे मैं प्रसन्न नहीं हूं, 17 पुराण ये सारे उपनिषद इत्यादि इत्यादि, तो वे और एक ग्रंथ अब लिखेंगे। अब वो ग्रंथ कौन सा होगा? कौन सा होगा? श्रीमद् भागवत लिखेंगे। तो जिस ग्रंथ की रचना से स्वयं लेखक ही प्रसन्न नहीं थे तो उसको पढ़ने वाले प्रसन्न होंगे, इसीलिए सावधान। अगर आप समझ सकते हो तो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इतना आप समझ सकते हो। ये प्रभुपाद सिखाए, ये वैष्णव सिखाते हैं, ये वैष्णवों की परंपरा है, उस मार्ग में हम लग जाएंगे। यानी कि जत मत तत पथ, जितने मत है सभी ठीक है, कोई भी ग्रंथ ठीक है, कोई भी शास्त्र, कोई भी मंत्र, कोई भी मूर्ति, कोई भी न कुछ ठीक है। हमने कहा था बुद्धि का क्या काम है? सत असत, सत असत विवेक। ये शरीर है, ये आत्मा है, और आगे हमने लिस्ट बनाई थी, ये स्वर्ग है और ये क्या है? वैकुंठ। और क्या क्या था? ये पुण्य है, ये फिर पाप भी है, ये देवता है तो ये भगवान है। ये सारे ग्रंथों का ढेर तो है, लेकिन इसमें से कौन सा ग्रंथ? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम। चैतन्य महाप्रभु का मत है, चैतन्य महाप्रभु ने अपना भी मत प्रदर्शित किया और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है? प्रमाण है, अथॉरिटी है। क्यों? अमलम, अमल, इसमें कोई मल नहीं, कोई दोष नहीं है, निर्दोष है ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र निर्मत्सरानाम सताम। ये श्रीमद् भागवत कैसा है? निर्मत्सरानाम, निर्मत्सर जो महात्मा है वे पसंद करते इस ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, जिसमें से प्रोज्जित कैतवोत्र, कैतव धर्म मैं थोड़ा निम्न स्तर का धर्म, तो देवी देवता की पूजा भी धर्म के अंतर्गत ही तो है, धर्म के अंतर्गत है, कई सारे धर्म के अंतर्गत है, लेकिन उसमें से कुछ को परित्यज्य भगवान ने कहा है और कुछ को स्वीकार करने के लिए कहा है। विधि और निषेध धर्म के अंतर्गत भी, ये विधि है, ये निषेध है, धर्म की बात होते हुए भी। फिर हम लोग हिंदू नहीं रहेंगे, आजकल हिंदू मतलब सब थोड़ा खिचड़ी हो गया, सब कुछ स्पष्ट नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य स्पष्ट करते हैं कि जीवन भी कुछ लंबा नहीं है, इसीलिए सावधान। तो नारद मुनि कहते हैं, अहम पुरौ अतीत भवे भवम मुने, पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। पिछले जन्म में क्या हुआ वो बता रहा है। वैसे अभी तो बन गए वो नारद। नारद मुनि के तीन जन्म हुए। ये नारायण 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 कहने वाला उनका तीसरा जीवन है, थर्ड लाइफ। तो लाइफ नंबर टू, द्वितीय क्रमांक के जीवन चरित्र को वो सुना रहे हैं। और पहले जीवन में नंबर एक का, वे गंधर्व थे, बड़े अच्छे गायक थे। तो स्वर्ग में एक सभा में भजन संध्या में वे गा रहे थे और उस सभा में कुछ सुंदर स्त्रियां भी उपस्थित थी। तो उनके प्रभाव के कारण भी उस सभा में उन्होंने वासुदेव का महिमा नहीं गाया और ऐसे कोई मनोरंजन के गीत गाए या कुछ देवता के गुण गाए हो। वासुदेवश महिमा ही न अनुवर्णिता, तो उनको शाप मिला, तुम दासी पुत्र बन जाओ। बड़े स्वर्गलोक में गंधर्व, बड़ा ऊंचा जीवन, हाई लाइफ हाई बर्थ। तो वहां से सही भाव का गीत नहीं गाने से उनका पतन हुआ, बन गए दासी पुत्र बन गए। दास्यास्तु तो मैं बालक ही था, लेकिन कहते कि मुझे खेलकूद में ज्यादा रुचि नहीं थी उस जीवन में भी, जैसे दूसरे बालकों को क्या चाहिए होता है, कुछ खिलौने चाहिए, कुछ क्या चाहिए, कुछ क्या चाहिए, कंप्यूटर गेम्स चाहिए आजकल। मैया चांद खिलौना, कृष्ण को भी चाहिए था। छोटे बालक है तो बालक का स्वभाव क्या है, वैसे बालावस्था क्रीड़ा सकता, लिख सकते हो आप लोग, बाल अवस्था में क्रीड़ा से आसक्त होते हैं, बालावस्था क्रीड़ा आसक्ता। फिर दूसरी अवस्था आ जाती है युवावस्था, युवावस्था में तरुणी रखता, तरुण और तरुणी एक दूसरों से आकर्षित होते हैं युवावस्था में। बालावस्था क्रीड़ा आसक्ता, युवावस्था तरुणी रखता, और फिर तीसरी अवस्था आ जाती है, वो अंतिम भी होती है, वृद्धावस्था चिंता मग्ना, चिंता में मग्न, एंग्जाइटी। तो तीन अवस्था में तीन विशेष कार्य, ये स्वाभाविक, ऐसी ऐसी प्रकृति है। खेलकूद में बालावस्था क्रीड़ा, बालावस्था में आपके पुत्र पुत्री आपको पता ही होगा छुट्टी के दिनों में क्या करते हैं, खेलने के लिए दौड़ते हैं, जब भी समय मिलता है तो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर थोड़े जवान हो गए तो फिर खोजते रहते, कहां तरुण खोजता है तरुणी को, तरुणी खोजती है तरुण को, मोबाइल का उपयोग करते हुए झट से उसका फोटो भी खींच लेते हैं। खूब कुछ चलता रहता है। अब बूढ़े हो गए तो फिर चिंता मगना। लेकिन नारद मुनि कह रहे मैं जब बालक था मुझे कोई खेलकूद में मुझे कोई आकर्षण नहीं था। तो सुदैव की बात, मैं जहां रहता था वहीं पर तो चातुर्मास का समय आ गया। चातुर्मास तो भागवत कथा का आयोजन हुआ। चातुर्मास मतलब चार महीने, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के, श्रावण भाद्रपद अश्विन और कार्तिक, ये चार महीने। श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक ये चार महीनों को क्या कहते हैं? चातुर्मास। तो चातुर्मास में भागवत कथा के लिए कुछ भक्ति वेदांतज परिव्राजकाचार्यज आ गए मेरे गांव के निकट ही। उन्होंने अपना तंबू डेरा डाल दिया और भागवत कथा सत्संग प्रारंभ हुआ। तो मेरी मां भी वहां जाती रही, उसकी सेवा थी रसोई घर में, बर्तन मांजने का कार्य वह करती थी शुद्रानी। ऐसे ही कुछ कार्य मिला, मैं भी जाता रहा, मैं भी कोई छोटी मोटी सेवा करता था उन संतों की भक्तों की। ए बालक इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और थोड़ा जल लेके आना, गंगा जल लेके आओ, दुर्वा ग्रास लेके आओ, ये ले जाओ, हाँ ऐसे कुछ सेवा करवाते थे। और विशेष उल्लेख कर रहे हैं नारद मुनि, उच्चिष्ठ लेपानुमोदितो द्विजयी, और उनके अनुमति से मैं प्रसाद ग्रहण करता था। क्या करता था? प्रसाद ग्रहण करता था, उनका संग, उनकी सेवा, कुछ कथा सुनने को मिलती थी और प्रसाद मिलता था। तो अच्छा समय बीत रहा था, और चार महीने कब बीत गए कुछ पता भी नहीं चला। जैसे यह साढ़े तीन चार दिवस, हमारे तो चार दिवस, उनके चार महीने। आपका जीवन कुछ मुश्किल से कट रहा है क्या? जब घड़ी की ओर तो नहीं देख रहा। याद अंदर आई होगी होगा। तो वो भागवत कथा ठीक है संपन्न हुई। वो भागवत कथाकार भक्ति वेदांतज परिव्राजकाचार्य वो आगे बढ़े, प्रचार हेतु गए सर्वत्र। फिर हम रह गए उसी गांव में रह गए, लेकिन सारे संस्कार तो पीछे छोड़ के गए। जो भी सीखा समझा सुना, प्रसाद ग्रहण किया, उनका विशेष अनुग्रह रहा। तो एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिमा गामपति, एक दिन की बात है, एक दिन की नहीं एक रात्रि की बात है। मेरी मां जा रही थी गौशाला की ओर दूध दोहने के लिए, तो हुआ बड़ी दुर्घटना हुई। नारद मुनि कह रहे क्या हुआ? सर्प दंश हुआ, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, सांप से स्पर्श हुआ पैर का, तो सांप ने क्या किया? काट लिया। मेरी मां नहीं रही, और मैं अकेला ही पुत्र था, पिताश्री नहीं थे। तो कहते कि मैंने तो अनुग्रहम मन्यमानम, तो जो भी हुआ उसी को प्रभु की ही रचना, प्रभु का ही अनुग्रह मैंने मान लिया। कोई उद्देश्य होगा प्रभु का इसके पीछे। तो हुआ, चूंकि वे भक्तों का संग प्राप्त कर चुके थे तो उनमें भी ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुआ था। इस सत्संग के पहले ही अगर ऐसी घटना होती तो शायद वे खूब फूट फूट के रोते या शोक करते और क्या क्या विधाता को कोसते कुछ, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम्। वासुदेव की, भगवान की जो भक्ति करता है उसको ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है, मोह माया से मुक्त होता है। वैसे ही बालक ही था लेकिन ज्ञान और वैराग्य पूर्ण इस बालक का जीवन। तो यहां तो वर्णन नहीं है लेकिन अन्य पुराणों में सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि नारद मुनि और मां एक कुटिया में रहते थे, पर्ण कुटी। तो मां अब जब नहीं रही तो उसी घर में उन्होंने अंतिम संस्कार भी किए, मतलब उस घर को उन्होंने लगाई आग। तो उसी के साथ मम्मी तो थी नहीं, मां तो नहीं रही, तो उसी घर में उन्होंने अंतिम संस्कार किया, मतलब उसके देह को भी जलाया और घर को भी लगाई आग। हो गए पुनः मुक्त, हो गए कि नहीं? दो ही बंधन थे, एक तो मां थी और एक घर था। अब मां जब नहीं रही तो उन्होंने घर को ही जला दिया और मम्मी भी जल गई। तो प्रणाम करके प्रतिष्ठम प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा में वे आगे बढ़े। उत्तर दिशा मतलब बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे या हिमालय की ओर, सारा संसार दक्षिण में है तो उत्तर में जाना मतलब पीठ संसार की ओर पीठ और मुख कहां, भगवान की ओर आगे बढ़ना है। जैसे पांचों पांडव भी, जब भगवान जब संसार में नहीं रहे तो उन्होंने भी उत्तर दिशा में जाने की परिपाटी अभ्यास विधि हमारे शास्त्रों में पढ़ने को मिलती। ऋषि मुनि जहां दौड़ते गंगा के मुख की ओर, वहां सारी गुफाएं हैं, बद्रिकाश्रम है और भी कई सारे तीर्थ है, तो जा रहे थे। तो रास्ते में कई सारे उनके अनुभव, वनान्य उपवनानी, कई सारे वन उपवन वाटिकाएं, कई सारे रंग बिरंगे धातु फूल पौधे जलाशय, कई बड़े शहर भी देख रहे, कई भी छोटे गांव में जा रहे, निसर्ग बैक टू द नेचर जा रहे। नगर से बीच में नगर भी आ रहे हैं, वन भी आ रहे हैं। तो अकेला ही बालक उत्तर दिशा में जा रहा है। घोरम प्रतिभयाकारम, तो चलते 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 एक भयानक वन में आ पहुंचा। या सांप ऐसे ही सर्वत्र सांप है, उल्लू है, सियार है, ये सारे भयानक सारे जीव जिन्होंने अपना घर ही बना लिया है, वन उनका घर है। तो उनके मध्य में नारद मुनि पहुंच चुके हैं। प्रतिश्रांत इंद्रियात्मा हम त्रटपरितो बुभुक्षिता, बड़े थके हुए हैं बालक, भोजन नहीं किया, किसी ने खिलाया नहीं, और जा ही रहा, कोई मांग भी नहीं रहा किसी से, भूखा भी है प्यासा भी है। तो फिर नदी देखी, रास्ते में नदी आई, नदी का किनारा, स्नात्वा पित्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः, बस उसने स्नान किया, पानी पी लिया, भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी पी लिया, तो स्नान से गतश्रमः, जो भी कष्ट था प्रवास का उससे मुक्त हुआ। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये, उस अरण्य में मनुष्य के अलावा तो सभी बाकी सभी थे, मनुष्य नहीं थे, वहां सारे पशु थे, पंछी से अरे सांप से बाघ शेर उल्लू शियार सब निर्भय बन के, अपना घर ही है, दे वर एट देयर होम। तो ऐसे वन में नारद जी ने पीपलोपस्थ अस्थितः, एक पीपल का पेड़ उन्होंने देखा, उसकी छाया में बैठे, और जो उन्होंने कथा सुनी थी भक्ति वेदांतों से, वो कथा का यहां पर वे चिंतन कर रहे हैं। पहले क्या किया था, श्रवण किया था, अब वे क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। चिंतयम यथा श्रुतम अचिंतयम, जैसे सुना था वैसा चिंतन करने लगे। विशेष या ध्यान अवस्था की, ध्यायन्तश्चरणाम्भोजम, भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। जैसे भी भगवान के चरणों का वर्णन सुनाया था उन भक्तों ने, वैसा ही ध्यान करने लगे, भगवान के चरण कमल कैसे है, कैसे कोमल है भगवान के चरण, और उनको क्या कहा है, चरण कैसे कमल, कमल जैसे चरण, मतलब कैसे होंगे, क्यों कहा है भगवान के चरणों को या हाथ को भी चरण कमल या हस्त कमल कहते हैं, कर कमल, तब कर कमल वरी नखम अद्भुत श्रृंगम केशव धृता नरहरि रूप जय जगदी शहरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान नरसिंह भगवान के भी कर कैसे है, कर कमल, कर कम तब कर कमल वरे, श्रेष्ठ हाथ जो कमल जैसे है, मानो ये जो है ये क्या है, कमल है, कमल जैसे लटक रहा है ना, मानो ये पंखुड़िया है, और कोमल जैसे, जैसे कमल कोमल होता है, तो भगवान के हाथ भी कैसे है, कोमल है। फिर कमल में लालिमा होती तो भगवान के हाथों में कैसी है, क्या है, लालिमा है। फिर आप कहोगे कमल में तो सुगंध भी होता है, तो क्या भगवान के हाथ में भी सूंघने से सुगंध आएगा? हां हां, भगवान के हाथ को सूंघो तो वहां क्या होगा, सुगंध है। बिना पाउडर लगाए हुए स्वाभाविक भगवान का शरीर कैसा है, सुगंधित है। और जहां पर भगवान कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं फिर वहां से आगे बढ़े, तो वहां पर आप पहुंचोगे तो उस स्थान पर आप सुगंध, वातावरण सुगंधित बन जाता है। तो आप बड़े आसानी से कल्पना कर सकते हो कि यहां पर कौन थे कुछ समय पहले, भगवान यहां। तो भगवान के चरण कमल या हस्त कमल, ऐसा वर्णन उन्होंने सुना था भगवान के। सारा भगवान की नाभि है, कैसी है, पद्मनाभ। भगवान की नाभि कैसी है, पद्मनाभ। वहां पर भी पद्म नाभ, या वही से तो कमल का फूल कहां से निकला, नाभि से, इसीलिए भी कमल नाभ पद्मनाभ। तो भगवान की कमर जो है पतली कमर वाले भगवान है। कैसे हैं, पतली कमर वाले, जैसे स्त्रियों की भी पतली होती ऐसा कुछ वैशिष्ट्य माना जाता है सौंदर्य का अलग। भगवान की कमर पतली है लेकिन उनका वक्षस्थल विशाल, विशाल छाती है भगवान की। उनके हाथ कैसे हैं, हरी हरी अजा तक नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर लात मार के ऐसे भगवान को बाहर कर सकते हैं आप। महापुरुष के लक्षण है, महापुरुष के 32 लक्षण बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कुल 32 32 लक्षण है भगवान के। साथ भगवान के साथ अंग कमल जैसे हैं, कमल सरीखे हैं, कमल के साथ इसकी तुलना है। उनका मुखमंडल भी कमल जैसा, नाभि भी कमल जैसी है, चरण भी कमल जैसे हैं, हाथ भी कमल जैसे हैं, आंखें भी कमल जैसी है। लिखा आपने, 5 तो हमने कह दिए, लोटस आईज, लोटस फेस, लोटस माउथ, लोटस हैंड, लोटस नेवो, और 2 कौन से है, क्या रह गया, होठ भी लोटस रंग तो है। तो फिर 7 भगवान के अंग, अंगों में लालिमा है, लाल लाल है। तलवे, भगवान के तलवे लाल है, हाथों में भी लालिमा है, उनके ओठ लाल है, उनके आंखों में भी लालिमा है। लेकिन ये क्रोध के कारण नहीं है, हमारी आंखें लाल हो जाती तो हम लोग मतलब क्रोधी थी, क्रोध। लेकिन भगवान की आंखों की जो लालिमा है ये उनकी उनकी कृपा है, कृपा दृष्टि जब बरसती है, बरसाते भगवान, तो उनकी आंखें लाल लाल आंखें, जैसे जगन्नाथ की बड़ी आंखों में क्या है, लालिमा होती है। तो 7 अंग भगवान के लाल वर्ण के है, 7 कमल के साथ उसकी तुलना है, हाथ लंबे हैं और उनकी गर्दन छोटी है। क्या छोटी को क्या कहते, अखुड़, अखुड़ मराठी में कहते हैं, शॉर्ट नेक, शॉर्ट नेक, जिस पर त्रिभंग ललित, उस पर रेखाओं का कंठ, 3 रेखाएं हैं भगवान के, दिखाई देती है। मतलब भगवान जब गर्दन जिस प्रकार से कर रखते हैं, करते नीचे ऊपर, तो और भगवान का भाल ये विशाल है, फोरहेड, ब्रॉड फोरहेड भगवान का। भगवान का नाक है रेज्ड नोज, ऊंचा है। भगवान का नाक कैसा है? ऊंचा है। इसलिए हम लोग भी अपना नाक कैसा चाहते हैं? ऊंचा चाहते हैं। अगर नौरी नकटी है तो भी हुंडा ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा दहेज देना पड़ता है, क्योंकि तो जाने अनजाने हम लोग हमारा सौंदर्य भी कैसा चाहते हैं? भगवान जैसा चाहते, क्यों है भी आत्मा का, हम उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन शरीर में कुछ थोड़ा बिगाड़ा जाता है तो फिर हम पसंद नहीं करते ऐसी दुल्हन। उसका नाक देखते हैं, पहले क्या देखते हैं? नाक ही देखते हैं। नाक देखा, नाक देख के आए। हम भी गांव में जब थे तो हम थोड़ा सुनना करते थे, जो खोज में जाते थे तो उनको बताया जा, हाँ नाक देख के आना, नाक देख के आओ, फिर उससे दहेज कम या ज्यादा। या तो रेज नोज, और भगवान का जो वॉइस, ये भी वो 32 में, भगवान का वॉइस इज वेरी डीप, उसमें गहराई या गांभीर्य है भगवान के आवाज में। मेघ गंभीर या वाचा, भागवतम में कहा है। कैसी वाचा भगवान की? मेघ गंभीर या वाचा, मानो मेघ की जैसे गर्जना होती है और गर्जना दूर दूर तक सुनाई देती है, तो भगवान भी जब बोलते हैं स्वाभाविक उनका बोलना बड़े दूर दूर तक सुनाई देता है और मीठा भी होता है। वचनम मधुरम, ये मधुरम, वो मधुरम, मधुरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो मधुर वाणी और गहरी उच्च वाणी है, उच्च आवाज उनका। और भगवान का इंटेलिजेंस भी डीप है, भगवान के बुद्धि में भी गहरी बुद्धि है, या ओल्ड इंटेलिजेंस कहते, ओल्ड एंड डीप, उसमें शैलोनेस नहीं, उथल उथल नहीं, उथल पाने वाला खड़खड़ाट फार, उथल पाने वाला, तो वैसा नहीं है। भगवान के बुद्धि डीप, गहराई है। तो आपको तो 10-20 तो लक्षण मिल गए वहां। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी लिखे उसमें सारे 32 आपको लक्षण, महापुरुष के 32 लक्षण आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार का वर्णन जो हुआ सुने थे नारद जी उस भागवत कथा में, तभी वन में जब जा और कोई नहीं है और उनको कोई भय भी नहीं है भगवान पास में होने का, वे अनुभव भी कर रहे हैं क्योंकि भगवान का चिंतन चल रहा है। भगवान के संबंध में जो बातें सुनी थी, यथा श्रुतम चिंतयम, जैसे सुना था वैसा स्मरण कर रहे। कुछ लोग हम तो स्मरण करते ही रहते भगवान का, हाँ चलता रहता स्मरण, चलता रहता, लेकिन स्मरण तब तक हम लोग नहीं कर सकते जब तक हमने क्या नहीं किया है, श्रवण और कीर्तन जब तक नहीं किया है तब तक स्मरण नहीं कर सकते। स्मरण तीसरे क्रमांक में है भक्ति के, जो नव प्रकार है भक्ति, नवविधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रह्लाद महाराज श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में ये नवविधा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति है। तो हम लोग भी यह भक्ति, दो प्रकार की तो भक्ति कर रहे हैं, वो कौन सी है? एक श्रवण और कीर्तन। भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? श्रवण कीर्तन से भक्ति की शुरुआत होती है। अभी हम कीर्तन कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? श्रवण कर रहे हो। या फिर आप घर जब लौटोगे तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? नहीं, कीर्तन करोगे, चिंतन भी करोगे ताकि आपको याद रहे। लेकिन घर लौटने पर आपको क्या करना है? आपको कीर्तन करना है। करोगे कि नहीं? कीर्तन मतलब केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भी कीर्तन तो है ही। लेकिन भगवान की कुछ गाथा कथा कहना, ये भी क्या है? ये भी कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तन, जो सुना है भगवान के संबंध में। भगवान का यशो अंकितान यत, भगवान का यश गान, उसको पुनः कहना, वो कीर्तन हुआ। तो ये श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है? विष्णु हो स्मरणम, विष्णु का स्मरण, कृष्ण का स्मरण होगा। और मुझे ये बात किसी को कहनी है, ऐसा पहले विचार करके जब आप सुनोगे तो क्या होगा? मैं जब लौटूंगा अपने गांव अपने शहर, तो मैं किसी को, आप सोच भी सकते हैं, उनको कहूंगा, इनको सुनाऊंगा, उसको सुनाऊंगा, ऐसा सोच के अगर जब आप सुनोगे तो क्या होगा? आप एक तो ध्यान पूर्वक सुनोगे, आप स्मरण रखने का प्रयास करोगे, मुझे कहना है तो फिर मुझे स्मरण करना होगा, तभी तो मैं कह सकता हूं। मतलब आपको, आप अधिक चिंतन करोगे, आप क्या करोगे? अधिक चिंतन करोगे, अधिक मनन करोगे, ताकि वहां पहुंचते पहुंच तक उसको आप खोओगे नहीं, गवाओगे नहीं, आपके साथ रहेगा वो ज्ञान। तो इस प्रकार आपका स्मरण बढ़ेगा, औरों को बताने के लिए आपको स्मरण रखना होगा, फिर ध्यान पूर्वक सुनोगे, लिखोगे भी, हाँ ये बात अच्छी है, ये जच रही, चलो लिख लेते हैं। फिर एक प्रकार से आपकी संपत्ति हो गई, आपने लिख भी लिया, स्टोर किया उसको, या ब्रेन की चिप्स में स्टोर कर सकते हो, या अपने नोटबुक्स का प्रेस पर लिख सकते हो। तो इसको हम लोग समाप्त करते हैं। ध्यायन्तश्चरणां भोजं भाव निर्जित चेतसा। तो ध्यान शुरू हुआ, उस एकांत स्थान में ध्यान करने लगे भगवान का। और ध्यान प्रारंभ कहां से होता है? भगवान के चरणों से। आरती करते वक्त हमें भगवान के चरणों को पहली आरती करते, बाद में नाभि क्षेत्र, फिर मुखमंडल, फिर पूरे शरीर की आरती उतारी जाती है। चरणों से शुरुआत, फिर नाभि मुखमंडल, पूरे विग्रह मूर्ति को आरती उतारते। तो उन्होंने ध्यान शुरू किया, वो भी चरणों से ध्यान शुरू किया। तो वह औत्कंठ्या अश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन मे शनै हरिः। तो भाव और प्रेम उदित होने लगा, जैसे भी वो स्मरण करते रहे, स्मरण जैसे अधिक बढ़ा तो प्रेम अधिक गाढ़ा होता गया। और उनके हृदय में भगवान का वे धीरे धीरे दर्शन करने लगे, माने भगवान ने प्रवेश किया वहां। प्रेमाती भर निर्भिन्न पुलकांगो अनितीर्वतः, पुल शरीर शरीर में एक रोमांच होने लगा। जब आत्मा का भगवान के साथ योग भक्ति योग लिंक संबंध स्थापित होता है तो शरीर में कई सारे विकार या कई लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें से एक लक्षण शरीर में रोमांच होना, आंखों में आंसू आना, शरीर स्तंभित होना, इस प्रकार आठ लक्षण बताए हैं अष्ट विकार। उसके वो भी आप शास्त्रों में आपको आठ विकार मिलेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार वे भगवान का पूरा साक्षात्कार दर्शन कर ही रहे थे। आनंद संप्लवे लीनो, आनंद संप्लवे, आनंद के सागर में वे अभी गोते ही लगा रहे थे। भगवान को जब देखा समक्ष तो आनंद ही आनंद, इकड़े तिकड़े चो ही कड़े। लेकिन कुछ थोड़ी दुर्दैव की बात, उन्होंने आवाज सुनी जिनका वो ध्यान कर रहे थे, जिस भगवान का सहसा वो भगवान अदृश्य हुए, मानो जैसे टेलीविजन को ऑफ करने से फिर वो सारा टेलीविजन का स्मरण भी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें आ गया तो हुआ। ये सारा पर्दे पर जो भी है दर्शन, दूरदर्शन जैसे वहां तो ब्लैकआउट, तो अपने हृदय प्रांगण में उनका जो स्क्रीन हृदय का, उसमें भगवान का दर्शन कर रहे थे तो ऑफ हो गया, वह दर्शन बंद हुआ और उन्होंने आकाशवाणी सुनी। वही भगवान अभी मेघ गंभीर या वाचा, उनकी गंभीर और उच्च वाणी उच्च आवाज तो है, तो उन्होंने कहा कि अब बस इतना ही दर्शन, इस जीवन में पुनः तुम्हें दर्शन नहीं हो पाएगा। भवान माम द्रष्टुम अर्हसी, पुनः नहीं दर्शन कर पाओगे। अभिपक्व कषायानाम दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम, तो नारद मुनि भी पूरे पक्व नहीं थे, कुछ कच्चे भी थे, बालक थे, साधना पूरी नहीं हुई थी, जैसे उस अजामिल की भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनको भेजा गया था हरिद्वार। फिर वहां जब साधना पूरी हुई तो भगवान के पुनः दूत आए और वैकुंठ ले गए। तो ऐसा ही कुछ नारद मुनि के जीवन में हो रहा है। सत्सेवया दीर्घया ते जाता मई दृढ़ामति, तुमने जो सत्संग किया, वो भक्ति वेदांत जो आए थे, जिन्होंने भागवत कथा जो सुनी सुनाई सभी को, तुमने भी सुनी, जिसके कारण जाता मई ते दृढ़ा मति, तुम्हारी मति तो दृढ़ हो चुकी है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग, नहीं नहीं वो नहीं, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। हम लोग निष्ठावान बन जाते हैं भागवत कथा के श्रवण से, सत्संग में जो भागवत कथा सुनते हैं फिर अध्ययन भी करते हैं, नित्य प्रति भागवत का अध्ययन करने से हमारी मति दृढ़ होती है। तो वही बात भगवान भी कह रहे हैं, तुमने जो सत्संग किया, सेवा भी की, श्रवण किया, उसके कारण तुम्हारी मति मुझ में दृढ़ हो चुकी है। और इस जीवन के अंत में जब भी तुम अपना शरीर का परित्याग करोगे तो तुम मेरे पार्षद बनोगे, मेरे साथ सदैव रहोगे। तो हुआ फिर नारद मुनि का तीसरा जीवन, पहला दूसरा, ये दूसरा चल रहा था। पहले में उनको शाप मिला तो बन गए दासी पुत्र, सुदैव से उनको सत्संग मिला, उनका उद्धार हुआ, दर्शन भी हुआ, और भी आगे प्रगति उन्होंने की आध्यात्मिक जीवन में, और कृष्ण प्रेम को पूरे प्राप्त किए, देहांत हुआ तो त्यक्त्वा देहम, पुनर्जन्म नहीं थी, पुनः जन्म नहीं हुआ भौतिक दृष्टि से। तो अगले जीवन में, अगले कल्प में वैसे वे बन जाते हैं नारद मुनि। नारायण 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 की पदवी उनको कैसे मिली, कैसे पदवी मिली उनको नारायण की, क्या करने से? भागवत कथा के श्रवण से। और क्या क्या किया उन्होंने? सत्सेवया, सेवा भी। भगवान ने कहा तुमने सेवा की है उन संतों की, और क्या किया था? उच्चिष्ट लेपन अनुलेपन, उनके अनुमति से उच्चिष्ट प्रसाद खाया था। तो ऐसा फल केवल एक व्यक्ति को ही मिलने वाला नहीं है नारद मुनि, तो ऐसा फल जो जो इस विधि को अपनाएंगे उन सभी को, सभी तो नारद मुनि नहीं बनेंगे लेकिन भगवान के पार्षद बनेंगे, भगवान के साथी संगी बनेंगे, भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। हरिवो निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरिवो।